यूनाइटेड नेशंस रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 20 नवंबर 2020 के बुलेटिन की सुर्खियां। G20 देशों के नेताओं की बैठक के मौके पर यूएन प्रमुख की पुकार, कोविड-19 से पुनर्बहाली को बनाना होगा समावेशी। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध यानी AMR के कारण अनेक बीमारियां बेकाबू, जानेंगे क्या है ये स्थिति। महिलाओं व लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एक नई रणनीति, और अरबों लोग अब भी शौचालय व ठोस स्वच्छता सुविधाओं से हैं महरूम। सुनिएगा शौचालय दिवस पर स्वच्छता की अहमियत के बारे में एक इंटरव्यू। हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इस सप्ताहांत G20 समूह के नेताओं के बीच होने वाली बैठक से पहले एकजुटता और सहयोग की अहमियत को फिर रेखांकित किया है। यूएन प्रमुख ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि संदेश स्पष्ट है, कोविड-19 से पुनर्बहाली को समावेशी होना होगा। निर्बलों के लिए ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी और इस संकट से उबरने की प्रक्रिया को टिकाऊ व जलवायु कार्रवाई के नज़रिए से महत्वाकांक्षी बनाना होगा। महासचिव गुटेरेश ने G20 के नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने का आह्वान किया है और ज़रूरतमंद देशों को कर्ज अदायगी से राहत प्रदान करने को अहम बताया है। उन्होंने कहा कि अगर कर्ज अदा न कर पाने यानी दिवालियेपन के मामले बढ़े तो वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। उनके मुताबिक कोविड-19 महामारी को कर्ज की महामारी में तब्दील नहीं होने दिया जा सकता, इसलिए पुनर्बहाली को टिकाऊ विकास लक्ष्यों के 2030 एजेंडा और पेरिस जलवायु समझौते के अनुरूप रखना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडेनम गेब्रियसस ने यूरोप और उत्तर अमेरिका में कोविड-19 संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि महामारी के फैलने के पहले 6 महीनों में जितने मामले सामने आए थे उनसे ज़्यादा मामले पिछले 4 हफ्तों में हुए हैं। साथ ही उन्होंने मौजूदा समय के एक बड़े स्वास्थ्य खतरे सूक्ष्म जीवी रोधी प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR पर चिंता जताई है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण दुनिया भर में इंसानों, पौधों और पशुओं की ऐसे संक्रमणों से मौत हो रही है जिनका सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध दवाओं से भी उपचार नहीं किया जा सकता है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने कहा है कि यूरोपीय देशों और अमेरिका में अस्पतालों और ICU सेवाओं पर भारी बोझ है। हाल के दिनों में क्षेत्र के देशों में संक्रमणों की संख्या तेजी से बढ़ी है। दुनिया भर में अब तक कोविड-19 के 5,66,00,000 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 13,55,000 लोगों की मौत हुई है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी प्रमुख ने कहा कि कोविड-19 पर वैक्सीन के लिए परीक्षणों के मोर्चे पर आशाजनक खबर मिली है, जिससे इस महामारी का अंत होने की उम्मीद बनती है। लेकिन उन्होंने आगाह भी किया कि संक्रमणों की कड़ी को तोड़ने के लिए और जिंदगियों को बचाने के लिए असरदार औजारों का इस्तेमाल जारी रखना होगा। उन्होंने आगाह किया है कि कोविड-19 महामारी हमें ध्यान दिलाती है कि व्यक्तियों, पशुओं और धरती के स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है।
We cannot protect and promote human health without paying attention to the health of animals and the health of our environment. That's nowhere more true than in the case of antimicrobial resistance.
हम मानव स्वास्थ्य की रक्षा और उसे बढ़ावा दिए बगैर पशुओं और हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकते। यह बात सूक्ष्म जीवी रोधी प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए विशेष रूप से सच है, जो हमारे समय का एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है। उन्होंने कहा कि एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध एक महामारी जितना बड़ा खतरा शायद नजर ना आए, लेकिन ये उतना ही खतरनाक है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल बैक्टीरिया संक्रमणों की रोकथाम और उनका उपचार करने के लिए किया जाता है। इन्हें एंटी माइक्रोबियल के तहत ही शामिल किया गया है, लेकिन व्यक्तियों व पशुओं के बजाय बैक्टीरिया में सूक्ष्म जीवी रोधक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है और ऐसे बैक्टीरिया लोगों और जानवरों को संक्रमित कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमणों पर काबू पाना और उपचार करना अन्य बैक्टीरिया की तुलना में मुश्किल साबित होता है। एंटीबायोटिक दवाओं का असर न होने के अलावा एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से एचआईवी, मलेरिया सहित अन्य बीमारियों के खिलाफ भी प्रतिरोध विकसित होने का खतरा है।
18 से 24 नवंबर तक विश्व एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस AMR जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध क्या है और दुनिया भर के विशेषज्ञ इसे लेकर इतने चिंतित क्यों हैं, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने बात की संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के तकनीकी सलाहकार डॉ राजेश भाटिया से। सुनिए ये इंटरव्यू।
So, डॉक्टर भाटिया, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध क्या है और इसके क्या कारण हैं?
इसे हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या ड्रग रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जिसके मायने ये होते हैं कि अगर एक पेशेंट जो इन्फेक्शियस डिजीज से बीमार है, अगर हम उसे स्टैंडर्ड डोजेज में एंटीबायोटिक्स दें तो उसे रिकवर करना चाहिए, लेकिन अगर वो रिकवर नहीं होता तो उसका एक मायना ये होता है कि जिन जर्म्स ने उस बीमारी को किया है उन्होंने अपने अंदर ऐसी शक्ति बना ली है कि एंटीबायोटिक्स का उन पर असर नहीं हो रहा। इसलिए ये शब्द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका कारण जो है वो समझने के लिए दो चीजें मालूम रखनी चाहिए कि एक तो जितने भी जर्म्स हैं वो अपनी जिंदगी में इवॉल्व होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर या उनका फंक्शन थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। और कभी ऐसा होता है कि उनका स्ट्रक्चर या फंक्शन ऐसा बदल जाता है कि वो एक एंटीबायोटिक के असर से हट जाते हैं, उससे वो नहीं मरते। लेकिन अगर हम उसी एंटीबायोटिक को बार बार इस्तेमाल करें उसी तरह के जर्म्स पर, तो वो जिनमें रेजिस्टेंट होता है उन बैक्टीरिया का या उन जर्म्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और वो पूरी स्पीशीज रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म की ही बन जाती है, और तब वो जिसे भी इन्फेक्शन देंगे उसके ऊपर उस एंटीबायोटिक का असर नहीं आएगा।
तो क्या ये कहना उचित होगा कि एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध अगली महामारी हो सकती है?
100% और अगली नहीं, ये तो एक ऐसी महामारी है जो कोविड की तरह नजर तो नहीं आ रही लेकिन हमारे साथ ही चल रही है, और अगर हमने इसके लिए कुछ नहीं किया तो इसका और भयंकर रूप हो जाएगा। आज की तारीख में दुनिया में ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग 7 लाख लोग हर साल उन जर्म से मरते हैं जिन पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता, और अगर हमने कुछ अब सावधानियां नहीं बरती तो 2050 तक मतलब 30 साल बाद हर साल 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग हर साल रेजिस्टेंट जर्म्स की वजह से मरेंगे।
तो इस समस्या से निपटने के उपाय क्या हैं? खासतौर पर क्या इसकी रोकथाम के लिए COVID-19 महामारी से कोई सबक सीखा जा सकता है?
जी हाँ, क्यों नहीं, COVID-19 से हम बहुत से सबक सीख रहे हैं। सबसे बड़ा सबक तो हम ये सीख रहे हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम वो इतना स्ट्रॉन्ग हो, इस तरीके से काम करे कि कहीं पर भी एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल ना हो। COVID-19 से हम ये भी सीख रहे हैं कि जब तक जनता, जब तक पेशेंट्स, जब तक कम्युनिटीज अपने आप को एक्टिवली एंगेज नहीं करेंगी किसी भी पब्लिक हेल्थ समस्या में, उसका पूरा हल नहीं हो पाएगा। जनता को ये चाहिए कि जो भी डॉक्टर उन्हें दवा एंटीबायोटिक जब भी देते हैं, लिख के देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसका सही तरीके से सही समय तक सही डोज में लेना अति आवश्यक है। और उसके अलावा अपने आप एंटीबायोटिक लेना, कोई बुखार हो गया एंटीबायोटिक ले लिया, बच्चे को बुखार हो गया उसे एंटीबायोटिक दे दिया, ये सब वो गलत बातें हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंट जर्म्स जो हैं उनका प्रजनन होता है और वो फैलते हैं।
एक बात समझाइए, ये एक स्वास्थ्य समस्या है, तो ऐसे में खाद्य और कृषि संगठन इससे कैसे जुड़ा है, FAO की क्या भूमिका है इसमें?
अब एक तो सिचुएशन होगी जहां हम इंसानों में एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन इंसानों से ज्यादा एंटीबायोटिक्स जो है वो जानवरों में, मवेशियों में, लाइव स्टॉक और पोल्ट्री में इस्तेमाल होता है। जानवरों में खूब एंटीबायोटिक सिर्फ उनका इलाज करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, उसके अलावा उनका ग्रोथ प्रमोट करने के लिए। अब एंटीबायोटिक तो सबको दे दिया लेकिन उस एंटीबायोटिक की वजह से जो रेजिस्टेंस आया और जिन बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस आया वो हमारे एनिमल्स के जो फूड है, दूध है, अंडे हैं, मक्खन है, मटन है, चिकन है, उस सब के थ्रू इंसानों में आता है। और जब इंसानों में आता है तो वही एक ऐसी बीमारी करता है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक का असर नहीं आता। तो हमें जानवरों में भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल रैशनली और बहुत ध्यान से करना है, और इसीलिए FAO इस चीज में एक लीडिंग भूमिका में आई है, ताकि जो वेटरनरी सेक्टर है, एनिमल हेल्थ सेक्टर है, उसमें भी इस चीज के बारे में जानकारी दी जा सके, वहां पर कितनी बड़ी समस्या है उसका मैग्नीट्यूड समझा जा सके, उसको आगे कैसे हल करना है उसमें देशों की मदद की जा सके। और सिर्फ FAO ही नहीं, हम FAO और WHO और OIE, तीनों जो दुनिया की बड़ी एजेंसीज हैं ह्यूमन और एनिमल हेल्थ से रिलेटेड, सब मिलकर काम कर रही हैं ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और कंट्री लेवल पर। और इस मिलजुल के काम करने का एक नाम आया हुआ है वन हेल्थ अप्रोच।
इस इंटरव्यू का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, पता है news.un.org/hi। शुक्रवार 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के अवसर पर दुनिया भर में समाजों से हर बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य की फिर से कल्पना करने की पुकार लगाई गई है। वैश्विक समुदाय का आह्वान किया गया है कि हर बच्चे के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना होगा जिनमें सभी बच्चे फल फूल सकें। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सेसोली और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर ने एक साझा संदेश में बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए तत्काल निवेश करने की पुकार लगाई है। उन्होंने कहा कि COVID-19 महामारी से निपटने की कार्रवाई के दौरान हर जगह हर बच्चे के अधिकारों को किसी भी जवाबी रणनीति में पहले रखना होगा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि COVID-19 महामारी से संक्रमित होने वाले बच्चों में लक्षण तो मामूली ही नजर आ रहे हैं, लेकिन संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, साथ ही उनकी शिक्षा और पोषण पर भी दीर्घकालीन प्रभाव पड़ रहा है, और युवाओं की एक पूरी पीढ़ी का स्वास्थ्य व रहन सहन उनके पूरे जीवन को ही बदल देने वाला होने की आशंका है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर ने कहा कि COVID-19 के दौरान पूरे समय ये गलत सोच बनी रही कि बच्चे इस महामारी से बहुत कम प्रभावित होंगे। ये सोच या ख्याल कोरा झूठ होने के सिवाय कुछ और नहीं हो सकता। बच्चे भी बीमार हो सकते हैं और उनसे भी बीमारी फैल सकती है। ये महामारी के विशालकाय आकार का केवल एक पक्ष है। बुनियादी सेवाओं में व्यवधान और बढ़ती गरीबी के कारण बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जोखिम पैदा हो रहा है। जितने लंबे समय तक ये महामारी रहेगी, उतना ही ज्यादा असर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और उनके रहन सहन पर पड़ेगा। एक पूरी पीढ़ी के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। यूनिसेफ का कहना है कि वैसे तो कोरोना वायरस बच्चों से एक दूसरे में और ज्यादा उम्र वाले लोगों में भी फैल सकता है, लेकिन ऐसे मजबूत सबूत भी हैं कि अगर पुख्ता सुरक्षा और एहतियाती उपायों के साथ स्कूल खुले रखे जाएं, तो स्कूल बंद रहने की तुलना में ज्यादा लाभ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सर्वाइकल कैंसर से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार को एक रणनीति पेश की है, जिसके जरिए वर्ष 2050 तक इस कैंसर से अनुमानतः 50 लाख महिलाओं व लड़कियों को मौत के मुंह से बचाया जा सकेगा। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
संगठन की महानिदेशक टेड्रोस एडहेनॉम गेब्रियसस ने एक वक्तव्य में कहा है कि किसी समय किसी भी तरह के कैंसर को दूर करना असंभव नजर आता था, लेकिन अब हमारे पास सपनों को वास्तविकता में तब्दील करने में सक्षम, किफायती और प्रमाण आधारित औजार उपलब्ध हैं। इस रणनीति को पिछले सप्ताह विश्व स्वास्थ्य असेंबली के सत्र में सदस्य देशों ने समर्थन दिया है। इसमें 90% लड़कियों को 15 वर्ष की उम्र होने तक वैक्सीन दी जाएगी, 70% महिलाओं की स्क्रीनिंग 35 वर्ष की उम्र होने तक की जाएगी और फिर 45 वर्ष की उम्र होने तक भी। साथ ही सर्वाइकल कैंसर बीमारी की शिनाख्त होने वाली 90% महिलाओं का इलाज किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायक महानिदेशक डॉक्टर प्रिंसेस नोथेम्बा सिमिलेला ने प्रेस वार्ता में कहा, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए ये एक मील का बड़ा पत्थर है, क्योंकि पहली बार विश्व एक ऐसे कैंसर से छुटकारा पाने पर सहमत हुआ है जिसे वैक्सीन के जरिए रोका जा सकता है, और केवल ऐसा कैंसर जिसका इलाज शुरुआत में ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा, एक वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय के रूप में हमारे पास इस कैंसर से होने वाली तकलीफें दूर करने का एक अवसर मौजूद है। वर्ष 2018 से लिए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार 5,70,000 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर हुआ, जिनमें से 3,11,000 महिलाओं की मौत हो गई। अगर इसकी रोकथाम के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वर्ष 2030 तक हर साल सर्वाइकल कैंसर के मामलों की संख्या 7,00,000 और इसके कारण होने वाली मौतों की संख्या 4,00,000 तक पहुंच जाने का अनुमान है। इस बीमारी की रोकथाम करके बहुत से आर्थिक लाभ होने की भी उम्मीद जताई गई है, क्योंकि महिलाओं के लिए आमदनी वाले कामकाज करना ज्यादा आसान होगा। सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में होने वाली चौथी आम कैंसर बीमारी है। उच्च आय वाले देशों की तुलना में निम्न व मध्य आमदनी वाले देशों में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों की दर 3 गुना ज्यादा होती है।
संयुक्त राष्ट्र अंतर क्षेत्रीय अपराध एवं न्याय शोध संस्थान UNICRI की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि अपराधी तत्व और हिंसक चरमपंथी COVID-19 महामारी का फायदा अपना जाल और पहुंच बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ऐसी साजिशी कहानियां भी फैल रही हैं जिनमें वायरस को हथियार बनाया जा रहा है और सरकारों में भरोसा कमजोर किया जा रहा है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
यूएन शोध संस्थान की निदेशक एंटोनिया मैरी डिमेयो ने स्टॉप द वायरस ऑफ डिसइंफॉर्मेशन रिपोर्ट की प्रस्तावना लिखी है, जिसमें उन्होंने आगाह किया है कि आतंकवादी, हिंसक चरमपंथी और संगठित आपराधिक गुट कोरोना वायरस संकट का फायदा अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ाने और सरकारों द्वारा की जा रही कार्रवाई के असर और उसकी विश्वसनीयता को जोखिम में डालने के लिए कर रहे हैं। यह भी चिंता जताई गई है कि कुछ आतंकवादी और हिंसक चरमपंथी गुटों ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने का प्रयास किया है ताकि लोगों को COVID-19 फैलाने और इसे काम चलाऊ जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए उकसाया जा सके। शोधकर्ताओं ने पाया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आतंकवाद भड़काने और कट्टरपंथियों को हमले करने के लिए प्रोत्साहित करने में किया जा सकता है। रिपोर्ट में ऐसे मामलों का उल्लेख किया गया है जिनमें दक्षिणपंथी चरमपंथी गुटों ने खुले तौर पर अपने समर्थकों से अल्पसंख्यक समूहों को वायरस से संक्रमित करने के लिए कहा है। शोधकर्ताओं ने 3 तरह के गुटों की जांच की है, दक्षिणपंथी चरमपंथी, आतंकी गुट अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के साथ जुड़े समूह और संगठित आपराधिक गुट। रिपोर्ट बताती है कि चरमपंथी वायरस के प्रति साजिश की कहानियों और गलत सूचनाओं को फैलाने में किस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन लोगों तक लक्षित ढंग से पहुंच रहे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर खास संदेशों को पसंद किया है। वैश्विक महामारी के कारण उपजे आर्थिक संकट की वजह से आपराधिक गुटों के पास उन कंपनियों और दुकानों पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका है जिन पर दिवालियेपन का जोखिम मंडरा रहा है। यूएन शोधकर्ताओं ने ऐसे अनेक औजारों की शिनाख्त की है जिनसे भ्रामक और गलत मंतव्य से फैलाई गई सूचनाओं का मुकाबला किया जा सकता है। इनमें डेटा विज्ञान, तथ्यों की पुष्टि करने वाले ऐप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के औजार शामिल हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में स्वच्छता, साफ सफाई व स्वस्थ आदतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के इरादे से 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया ताकि सभी लोगों को स्वच्छता व साफ सफाई के साधनों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। दुनिया की कुल आबादी के लगभग 25% हिस्से को बुनियादी सुविधाएं हासिल नहीं हैं। 3 अरब से ज्यादा लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहां हाथ धोने की जरूरी सुविधाएं भी मौजूद नहीं हैं, जिनमें साबुन और पानी का अभाव शामिल है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने इस स्थिति को नैतिक, आर्थिक व स्वास्थ्य नजरिए से अस्वीकार्य करार देते हुए कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी इंसानों को उनकी निजता व गरिमा का सम्मान करने वाली सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध हों। विश्व शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विकास के लिए स्वच्छता की महत्ता और पर्यावरण पर इसके प्रभावों को पहचान देते हुए वर्ष 2013 में घोषित किया था। इसके तहत खुले स्थानों में शौच करने के चलन या मजबूरी को खत्म करने, महिलाओं व लड़कियों और नाजुक परिस्थितियों में रहने को मजबूर लोगों की विशेष आवश्यकताओं का खास ध्यान रखने का आह्वान किया गया है। विश्व शौचालय दिवस के मौके पर स्वच्छता से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सुनिए भारत में यूनिसेफ की स्वच्छता विशेषज्ञ प्रतिभा सिंह के साथ हमारी सहयोगी अंशु शर्मा की ये बातचीत।
खुले में शौच कितनी बड़ी समस्या है, खासतौर पर दक्षिण एशियाई देशों में?
दक्षिण एशियाई देशों में खुले में शौच एक अपने आप में बहुत बड़ा सामाजिक मतलब एक चुनौती के रूप में रही है हमेशा से, और लगभग 60% जो जनसंख्या है उनके पास एक बेसिक शौचालय की सुविधा भी नहीं है। और शौचालय की अनुपस्थिति में एक तो इसका बहुत बड़ा जो मैनिफेस्टेशन होता है या हम कहेंगे इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, वो स्वास्थ्य पे पब्लिक हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ इसका प्रभाव पड़ता है जो संचारी रोग हैं, ट्रांसमिसिबल डिजीज जिसे हम कहते हैं, संचारी रोगों के फैलने में। शौचालय की अनुपलब्धता से शौच जब मल जो है वो खुले क्षेत्रों में रहेगा उसमें मक्खियों का आना जाना और मक्खियों के द्वारा जो बीमारी उत्पन्न करने वाले कीटाणु विषाणु और जीवाणु है उनका संचारण होगा, और जो संक्रमित व्यक्ति है उससे कहीं ना कहीं संक्रमण की चांस बढ़ जाए, उनसे कहीं ना कहीं संक्रमण की गुंजाइश बढ़ जाती है। साथ ही साथ यदि हम देखें तो शौचालय की अनुपलब्धता में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मुश्किल का समय है, क्योंकि उसमें समय भी जाता है, और साथ साथ में खुले में शौच जाते समय महिलाओं को, बच्चों को, जानवरों से खतरा हो सकता है वहां पे मच्छर या मक्खियों के होने में, जो खुले शौच का स्थान है। और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं जहां महिलाओं की सुरक्षा पे भी प्रभाव पड़ता है और उनके उनकी जो डिग्निटी, उनकी जो गरिमा है, उसका भी कहीं ना कहीं उल्लंघन होने का बहुत इसमें चांस रहता है।
तो इस वक्त दुनिया भर में COVID-19 महामारी फैली हुई है, ऐसे में विश्व शौचालय दिवस और ज्यादा किस तरह अहम हो जाता है?
खुले शौच से या स्वच्छता के अभाव से या हाथ न धोने से इसका सीधा सीधा एक आपस में तालमेल है कि तो जितना हम स्वच्छता रखेंगे अपने बीच में, शौचालयों का उपयोग करेंगे, उतना ज्यादा कोरोना पैंडेमिक से हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और अपने आसपास समुदायों को भी बचा सकते हैं।
भारत उन देशों में से है जहां हाल ही में स्वच्छता अभियान के तहत स्थिति में काफी सुधार हुआ है, आंकड़े क्या कहते हैं, किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है?
स्वच्छ भारत मिशन को अक्टूबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था, और उस समय स्वच्छता की स्थिति, मैं बोलूंगी खुले में शौच की स्थिति ठीक नहीं थी देश में। लगभग आधे से थोड़ा ज्यादा जो हमारा प्रतिशत है ग्रामीण क्षेत्रों का, वहां पे खुले में शौच का ये समस्या थी। लेकिन अगर हम देखें पिछले साल के अंत तक या 2019 के अंत तक लगभग 6 लाख गांव ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को खुला शौच मुक्त घोषित कर दिया था।
खुले में शौच की समस्या समाप्त करने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र किस तरह काम कर रहा है, यूनिसेफ की इसमें क्या भूमिका रही है?
जो कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन या इसे हम समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता की बात कर सकते हैं, तो ये सारे अप्रोच और इसको ग्लोबल जो एक्सपीरियंस थे विश्व पटल पे जितने इस पे अनुभव निकल के आए थे उनका, उनको सबको हमने सरकार से यहाँ साझा किया, और भारत में हमने ये समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता का जो मेथोडोलॉजी है, जो अप्रोच है, इसकी पायलटिंग यूनिसेफ ने लगभग सन 2010 या 2011 से ही इसकी पायलटिंग शुरू कर दी थी। तो एक छोटे पैमाने पर, छोटे स्तर पर इसको पहले जांच करके देखा गया, इसका एक डेमोंस्ट्रेशन करके देखा गया कि क्या ये मॉडल वर्क करता है, काम करता है कि नहीं करता है, और यदि इस मॉडल को हमें कंटिन्यू करना हो 4-5 साल के लिए तो उसमें हमें कहाँ चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों को हम, उनसे हम बाहर किस तरह निकल सकते हैं।
इस इंटरव्यू का विस्तृत संस्करण आप हमारी वेबसाइट पर सुन सकते हैं, पता है news.un.org/hi। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, अब महबूब खान को अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी।